नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज हमारे कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने इस अध्ययन में देखा है कि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से बड़ा है, प्रभु यीशु भविष्यद्वक्ता से बड़ा है और प्रभु यीशु मूसा से भी बड़ा है। और इस प्रकार से आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। परंतु इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे जाएं, आइए हम सब फिर से परमेश्वर की निकटता में आए, प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए आशीष मांगे। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन दूर दूर रहकर एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम आपके वचन से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, हमारे जीवन के लिए ग्रहण योग्य हो सके। पिताजी, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, आप उन्हें अपनी शांति दें। जो बीमार हैं, आप उन्हें छुए और चंगाई दें और जो किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं, आप उनकी भी सहायता करें। प्यारे प्रभु, आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करना है। ऐसा ना हो कि हम आज्ञा ना मानने के कारण चूक जाएं। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो सबके मन को जांचता है। इस संपूर्ण जगत में ऐसी कोई बात नहीं जो उससे छिपी हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुली है। मेरे प्रियो, हम आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मसीह लेवी याचकों से बड़ा है। पद 14 से आरंभ करके अध्याय 7 के पद 28 तक लेखक यही सिद्ध करेगा कि प्रभु यीशु लेवीय याचकों से बड़ा महायाजक है। यह बात इब्रानी विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वे परमेश्वर के निकट आने के लिए वे लेवी वंश के याजकों के द्वारा आते थे। ये याजक मिलाप वाले तंबू और बाद में मंदिर में सेवा करते थे। उन्हीं के द्वारा उन्हें परमेश्वर को भेंट चढ़ाना होता था। तो आइए अब हम देखें हमारा महान महायाजक। प्रभु यीशु हमारा महान महायाजक है। पौलुस प्रभु यीशु के याजक होने के बारे में ऐसा उत्साहित रहता था कि इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में वह कहता है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। मेरे मित्रों, वह चाहता था कि उसके पाठक तुरंत महायाजक को समझें। यह आगे के पत्र का मुख्य विषय होगा और इस महान सत्य का व्यवहार रूप भी होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमारा महायाजक है। याजक का अर्थ हम प्रायः पुजारियों से समझते हैं या पुरोहितों से समझते हैं। वह मनुष्य को परमेश्वर के निकट नहीं आने देता है। उसके अनुसार परमेश्वर के निकट आने के लिए किसी प्रकार की दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए आराधक को उसी के द्वारा परमेश्वर के निकट आना होता है, क्योंकि उसके पास दैवी शक्ति है। ऐसी बातें प्रभु यीशु द्वारा किए गए काम और सब विश्वासियों के याजक होने का खंडन करती है। सब विश्वासियों का याजक होना एक ऐसा तथ्य था जिस पर जॉन कैल्विन ने बहुत अधिक बल दिया है। हम सबको एक याजक की आवश्यकता है। जी हाँ, हम सबको सहायता की आवश्यकता है। हम सब में कमियां हैं। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय के 33 पद में अय्यूब की पुकार थी, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। अय्यूब चाहता था कि उसके और परमेश्वर के बीच एक याजक हो जो एक हाथ उसके हाथ में रखे और दूसरा हाथ परमेश्वर के हाथ में रखे और इस प्रकार उन्हें साथ रखे। प्रभु यीशु ऐसा मध्यस्थ है, ऐसा याजक है जिसके द्वारा प्रत्येक विश्वासी की पहुंच परमेश्वर तक है। लिखा है, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया। मेरे मित्रों, मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर रहते समय याजक नहीं था। यीशु ने पतरस से कहा था कि वह मछली पकड़कर उसके पेट से सिक्का निकाले और मंदिर का कर चुका दे। मेरे विचार में यह इसलिए कि वह स्पष्ट करे कि वह याजक नहीं था, क्योंकि याजकों से मंदिर का कर नहीं लिया जाता था। याजक होने के लिए आवश्यक था कि वह लेवी वंश, हारून के वंश का हो। यीशु यहूदा के गोत्र का था, अतः वह याजक वंश का नहीं, राजसी वंश का था। इस पृथ्वी पर यीशु परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता था, परंतु जब वह स्वर्ग में गया तब वह एक याजक हुआ जो परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ वह हमारे उद्धार के निमित्त मरा और स्वर्ग में वह हमारे उद्धार को संभालने के लिए जीवित है। इसमें शक नहीं कि उसने अपनी जान की बलि देकर याजक का काम किया था, परंतु परमेश्वर के सामने हमें उपस्थित करने के लिए उसे स्वर्ग जाने के लिए रुकना था। मेरे मित्रों, मसीह का पद 3 गुना है। पहला, भविष्यद्वक्ता जो 2000 वर्ष पूर्व जब वह इस पृथ्वी पर था। दूसरा, आज वह याजक है। और तीसरा, भविष्य में एक दिन आकर वह राज करेगा और राजा होगा। वह इब्रानियों की पत्री का एक महान विषय है। आगे हम पढ़ते हैं, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। पौलुस हमें इसकी चुनौती देता है, वह हमें इसकी आज्ञा देता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखें, वह हमारे उद्धार को दृढ़ता से थामे रहने की चुनौती नहीं दे रहा है, वह इस पृथ्वी पर हमारे अंगीकार को थामे रहने की चुनौती दे रहा है। वह मसीह यीशु के लिए हमारे जीवन के बारे में कह रहा है, वह हमारे उद्धार के लिए यहाँ मर गया था और हमारे उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए स्वर्ग में जीवित है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम अच्छे गवाह बनने योग्य हों। कुछ लोग कहते हैं हम मसीही जीवन जीने में असमर्थ हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह सच है कि आप मसीही जीवन जीने योग्य नहीं हैं और न ही परमेश्वर कहता है कि आप मसीही जीवन जिएं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे मसीही जीवन जीने का आदेश नहीं दिया है, क्योंकि मैं असमर्थ हूं। मैंने प्रयास करके स्वयं देखा है, वह तो यह कहता है कि हमारे द्वारा वह जिए, वह स्वर्ग में जीवित है कि हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जी हां, यहां अपनी गवाही बनाए रहें। मेरे मित्रों, अध्याय 11 में हम विश्वास के नायकों की उपस्थिति को देखेंगे, जिससे प्रकट होगा कि प्रत्येक युग के स्त्री पुरुषों में विश्वास ने क्या किया है। उन सब की गवाही अति उत्तम थी और सबकी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। उनके विश्वास का अंगीकार सराहनीय था, वे विश्वास का जीवन जीते थे और परमेश्वर चाहता है कि हम भी विश्वास का जीवन जिए। इब्रानियों के पत्र 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। लिखा है तो भी, शब्द बाद में अनुवादकों ने जोड़ा है, वह परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जंगल में जब उसकी परीक्षा ली गई थी तब वह परीक्षा में गिर नहीं सकता था, क्योंकि वह परमेश्वर था। तथापि उस पर परीक्षा का दबाव हमसे अधिक था। योहन्ना रचित सुसमाचार 14:30 में वह कहता है, इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। शैतान को आप में और मुझ में तो खोट मिल जाएगी, परंतु प्रभु यीशु में उसे कुछ भी नहीं मिला। उदाहरण के लिए, यदि किसी जहाज पर दबाव बहुत अधिक हो तो वह फट जाता है और इस प्रकार दबाव कम हो जाता है। इसी प्रकार हम पर भी जब दबाव बढ़ जाता है तो हम समर्पण कर देते हैं और इस प्रकार दबाव कम हो जाता है। यीशु परीक्षा में नहीं गिरा, अतः उस पर बहुत दबाव अर्थात बहुत अधिक दबाव दिया गया, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। यीशु पर परीक्षाओं का दबाव असीमित था, वह परखा गया परंतु निष्पाप रहा। वह परखा गया था इसलिए वह हमारी दशा को संभालता है, समझता है। हमारा यह महायाजक हमें अच्छी रीति से समझता है। मेरे प्रियो, मैं इसराइल के लिए सदा यही सोचता हूँ, उनके लिए हारून की मृत्यु मूसा की मृत्यु से अधिक दुखदायी थी। वह उनका महायाजक था, कुछ लोग तो उसके साथ ही बड़े हुए थे और बचपन में उसके साथ खेलते थे, जंगल में भी उसके साथ रहे थे। वे बेझिझक हारून के पास जाकर कह सकते थे, हारून मैंने यह गलत काम किया है और मैं इसके लिए यह बलि लाया हूं। हारून उनकी बात समझ सकता था और उनके साथ सहानुभूति दिखा सकता था। हारून की मृत्यु के बाद वे सोचते होंगे कि उसका पुत्र क्या उनको वैसी ही सहानुभूति दिखा पाएगा, उनकी सहायता कर पाएगा। मेरे प्रियो, हमारे पास भी एक महान महायाजक है जो सदैव उपलब्ध है और हमारी दशा को समझता है। वह केवल शब्दों से ही हमें नहीं समझता, वरन उसने इस पृथ्वी पर हमारी दुर्बलताओं का स्वयं ही अनुभव किया है। वह जानता है कि भूख क्या है, वह जानता है कि दुख क्या है। यीशु रोया भी था। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, तो भी निष्पाप निकला। इब्रानियों की पत्री 4:16 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें। यहाँ हिया बांध कर चलने का अर्थ है बोलने की स्वतंत्रता। हम बोलने की स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। मैं उससे वह सब कह सकता हूँ जो मनुष्य के सामने नहीं कह सकता। वह मेरी दुर्बलताओं को तो जानता ही है, इसलिए मुझे उससे कहने में कोई भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं उससे याराना नहीं रख सकता। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर है और मैं आराधना और श्रद्धा के साथ उसके पास आता हूँ, परंतु मैं निसंकोच उसके साथ बातें कर सकता हूँ, क्योंकि वह परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य है। मैं उसके सामने अपना दिल खोल सकता हूँ। अतः मुझे शक है कि हमारे सुनहरे वचनों की प्रार्थना का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, विशेष करके तब जब हम उससे कुछ छिपा करके प्रार्थना कर रहे हों। मेरे मित्रों, मैं सोचता हूं कि यदि हम उसके सामने खुले दिल से स्वतंत्र होकर आए तो वह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। क्या वह हमारी ओर नहीं देखेगा? यह भी एक कारण है कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम उसके सामने खुल करके बातों को नहीं रख पाते हैं और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी नहीं होती हैं। हम उसके पास दिल खोलकर ईमानदारी से नहीं आते हैं। हम संकोच के साथ प्रार्थना करते हैं। लिखा है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट, परमेश्वर का सिंहासन जो कभी न्याय का सिंहासन था, अब अनुग्रह का सिंहासन है, दया का सिंहासन है, कि हम पर दया हो। हमें बहुत अधिक दया की आवश्यकता है। दया एक प्रकार से नकारात्मक बात भी है। यह बीते समय की बात है। हमने परमेश्वर की दया के कारण उद्धार पाया है। तीतुस की पत्री 3:5 में पौलुस कहता है, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार हुआ। जी हाँ, वह मुझ पर दयावान है। इसलिए हम पढ़ते हैं, वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सहायता अत्यधिक व्यवहारिक है जो भविष्य का बोध कराती है। हम दया प्राप्त करें और आवश्यकता के समय अनुग्रह पात्र बने। भजन संहिता 23:1 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। मेरे मित्रों, दाऊद कहता है कि उसे भविष्य में घटी न होगी। यही तो इस भजन की सुंदरता है। उसे घटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहोवा उसका चरवाहा है। मेरा महायाजक स्वर्ग में है और मैं उसके पास कभी भी जा सकता हूँ। वह मेरा चरवाहा भी है। प्रसंगवश, क्या आज आप उसके पास गए हैं? आपने उससे क्या कहा है? क्या आपने उससे कहा है कि आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आपने अपने पाप उसके सामने स्वीकार किए हैं? आप उसके पास जाकर पाप स्वीकार क्यों नहीं करते? उसके सामने बहाना ना बनाए, जी हाँ, वह तो जानता है कि आप उसी के अनुग्रह से उसके पास आ सकते हैं। उसके पास पूरी स्वतंत्रता से जाएं और दिल खोलकर बातें करें। उसके पास आवश्यकता में आपकी सहायता के लिए दया और अनुग्रह दोनों है। इसलिए आप इस अवसर को ना खोएं, आप उसके पास अवश्य ही आ जाएं। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहां पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 के प्रस्तावना को देखेंगे। विषय है याजक की परिभाषा। इस अध्याय में भी मसीह हमारा महायाजक है, अर्थात हमारा महायाजक विषय ही आगे को चल रहा है। लेखक उसे लेवीय याजकों से, जिन्हें इब्रानी विश्वासी भली भांति समझते थे, ऊंचा एवं महान दिखाता है। पहले 10 पदों में याजक की परिभाषा दी गई है। हम देख चुके हैं कि प्रभु यीशु के 3 कार्यभार हैं, भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा। वह मनुष्य के लिए परमेश्वर का अंतिम वचन है। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने वह सब कुछ कह दिया जो उसके मन में था। भविष्यद्वक्ता के रूप में उसने 2000 वर्ष पूर्व बातें की थी। अब वह परमेश्वर का वचन है और इस पीढ़ी के लिए वह याजक है। भविष्य में एक दिन वह राजा बनकर आएगा। इस पल वह हमारा महान महायाजक है। मेरे प्रियो, प्रत्येक विश्वासी भी एक याजक हैं, जैसे लेवी गोत्र के सब जन याजक थे। हम याजक होने के कारण परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं। स्तुति करना भी भेंट चढ़ाना है। क्या आपने आज उसकी स्तुति की है? हम उससे अपने हाथों का फल, अपनी बुद्धि का फल और अपने समय की भेंट चढ़ा सकते हैं। विश्वासी यह सब भेंट स्वरूप परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। प्रार्थना याजक का काम है। हमारे इस स्थान और सौभाग्य को पहचानने से हम आज की सब युक्तियों से बच सकते हैं। मेरे मित्रों, आज हम आराधना द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की 2 चरम सीमाएं देखते हैं। एक है भावनात्मक पहुंच और दूसरी है रीति रिवाज की पहुंच। ये दोनों ही आत्मिकता नहीं है। हमें जैसे हम हैं वैसे ही परमेश्वर के पास आना है। शेष सब तौर तरीकों को त्याग कर दें। मेरे प्रियो, एक अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरने के लिए अपनी यान का द्वार बंद करने जा ही रहा था कि किसी संवाददाता ने उससे प्रश्न पूछा। ये संवाददाता कभी कभी बड़ी मूर्खता के प्रश्न पूछ बैठते हैं। आपको अंतरिक्ष की उड़ान का अंतरिक्ष यात्री होना कैसा लग रहा है? अंतरिक्ष यात्री ने उत्तर दिया, यदि आप 50,000 खंडों पर बैठे हो और प्रत्येक खंड कम से कम कीमत में खरीदा गया हो, आज अधिकांश लोगों की आराधना ऐसी ही होती है। वे या तो रीति रिवाज के अनुसार आराधना करते हैं या भावना से भरकर आराधना करते हैं। वे वचन की अपेक्षा भावनाओं को स्थान देते हैं। मेरे प्रियो, अध्याय 4 का अंतिम पद हमें कहता है कि हम स्वतंत्र होकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएं। हमें दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। वह हमें यह देने में समर्थ है क्योंकि वह हमारा महायाजक है। मेरे प्रियो, क्यों ना आज हम अपने उस महायाजक के पास आ जाएं, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके पास खुले मन और खुले दिल से आएं। अपनी सारी बातों को आप बता दीजिए। मेरे जवान भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, आप कोई भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अपने दिल की बातों को खोल करके बता सकते हैं। वह आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। वह आपके पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर है। क्या आप तैयार हैं? मैं यह निर्णय आपके हाथों में छोड़ देता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।